हरे कृष्ण। पिछले कुछ हफ्तों से महाभारत पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। महाभारत बड़ा विशेष ग्रंथ है, बहुत गुणगान पुराणों में इसका किया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो गुणगान श्री कृष्ण का महाभारत में हुआ है वो अन्य सारे वेदों और शास्त्रों में भी नहीं हुआ। साथ ही साथ सारे वेदों सारे उपनिषदों का सार महाभारत में है, भगवद गीता के रूप में। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। थोड़ा साउंड ठीक करना, इसको क्लियर नहीं। तो भगवद गीता ये सार है शास्त्रों का, उपनिषदों का। जहां भी वेदों में शास्त्रों में सीधे भगवान का गुणगान है, जैसे हम सब जानते हैं कि उपनिषदों में वेदों में भगवान का गुणगान है, लेकिन सब स्थानों पर सीधे नहीं है, परोक्ष अपरोक्ष, या तो घुमा फिरा के किया गया है, बहुत कम स्थानों पर सीधे है। तो जहां भी सीधे श्री कृष्ण का गुणगान है उन सब को लिया जाए, और महाभारत में सीधे श्री कृष्ण के गुणगान को लिया जाए, तो महाभारत में ये गुणगान ज्यादा है। इसीलिए महाभारत बड़ा विशेष ग्रंथ है भक्तों के लिए। और फिर सारे उपनिषदों का सार भगवद गीता तो है ही, और भी बहुत गुणगान महाभारत का शास्त्रों में किया गया है कि किस प्रकार ये इस जगत से तारने वाला है। इसको भारत कहते हैं, भारत स्थान भी कहा जाता है, और इस ग्रंथ को भी भारत कहा गया है। तो भारत इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इस भौतिक जगत से तारने वाला ग्रंथ है। अगर कोई भगवद गीता को समझ लेता है, भगवद गीता को पढ़ लेता है, अपने जीवन में उसको उतारता है, तो निश्चित है कि इस भौतिक जगत से परे बाहर इन कष्टों के जीवन से बाहर जाने का मार्ग सशक्त हो जाता है। तो ऐसे महाभारत ग्रंथ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार चर्चा ये हुई थी कि कैसे द्रौपदी का विवाह हुआ। द्रौपदी एक स्त्री होते हुए, पांच पतियों की पत्नी होते हुए भी सती कहलाती हैं। इसका भी वर्णन हमने किया था कि कैसे ये संभव है, मध्वाचार्य जी की टीका पर चर्चा करके इसको बतलाया था कि कैसे पांच पतियों के होते हुए भी वो सती मानी जाती है, और कैसे पांच पति होना ये शास्त्र सम्मत है, ये भी पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी। तो द्रौपदी के विवाह की चर्चा के बाद अब आगे इस चर्चा को करेंगे। आज महत्वपूर्ण चर्चा है, और आज का विषय होगा सुभद्रा का हरण। कैसे सुभद्रा का हरण हुआ और कैसे अर्जुन ने विवाह किया, अर्जुन के अन्य विवाहों का भी वर्णन होगा। तो पिछली बार चर्चा यहाँ तक हुई थी कि पांडव वापस आ गए, खांडव प्रस्थ दिया गया, फिर वहाँ वो रहने लगे, उन्होंने उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया। अब जब एक पत्नी है, पांच पति हैं, तो स्वाभाविक है आपस में हो सकता है कभी कभी कुछ मन मुटाव हो जाए, कुछ वाद विवाद हो जाए। तो इसीलिए नारद मुनि आए। नारद मुनि ने आकर पांडवों को बुलाया, बिठाया, और उनसे कहा कि मैं जो तुमसे कह रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनो। और वो कहने लगे कि पूर्व में दो बहुत शक्तिशाली राक्षस थे। वो इतने शक्तिशाली थे ब्रह्मा जी की वरदान के कारण, बहुत उन्होंने कड़ी तपस्या की और फिर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। जब ब्रह्मा जी आए तो हर असुर की तरह इन्होंने भी यही मांगा कि हम मरना नहीं चाहते हैं, और हर बार की तरह ब्रह्मा जी ने यही कहा कि ये वरदान मैं दे नहीं सकता, कुछ और मांगो। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम कीजिए। दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे, असुर थे, असुरों में भी प्रेम होता है आपस में, लेकिन तो असुर अपने बहुत प्रेम करते थे। तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप हमें ये वरदान दे दीजिए कि अगर हम मरें तो एक दूसरे के सामने ही मरें, अर्थात हम में से एक दूसरे को ही कोई मार सके, कोई तीसरा हमें मार नहीं सके, क्योंकि वो जानते थे कि उनमें बहुत प्रेम है, कभी झगड़ा नहीं होगा। तो अगर मारना है तो हम ही दोनों एक दूसरे को मारें और कोई नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी भी आंख बंद करके तथास्तु कह देते हैं, और फिर श्री कृष्ण को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। ब्रह्मा जी के कारण ही तो भगवान को आधा नर और आधा सिंह बनना पड़ा ना, क्योंकि उन्होंने वरदान दे दिया। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब इन दोनों में बहुत प्रेम था, इतना प्रेम था, एक ही थाली में खाते थे और कभी झगड़ा ही नहीं हो, और झगड़ा नहीं हो तो कोई इनको मार नहीं सकता, ये तो वरदान हो गया। न देवता, न किन्नर, न गंधर्व, न यक्ष, न चानर, कोई उनको मार नहीं सकता। और इन्होंने सारे ब्रह्मांड में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया, और सारे देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे ये आपने क्या कर दिया, ये क्या आशीर्वाद दे दिया, ये तो मर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आशीर्वाद था कोई मार नहीं सकता, आपस में ही मरेंगे। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ये क्या आपने आशीर्वाद दे दिया। वैसे ब्रह्मा जी से पद में वे लोग कम हैं, इसीलिए कह नहीं सके कि आगे से ऐसा मत कीजिए, आप भी आंख बंद करके दे देते हैं। लेकिन उन्होंने दूसरे शब्दों में, अच्छे शब्दों में कहा कि देखिए आपके वरदान के कारण इतना कष्ट हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कोई चिंता मत करो, अभी मैं उपाय करता हूं इन दोनों की मृत्यु का, दोनों में बहुत प्रेम है, मरेंगे नहीं निश्चित। तो उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा कि तुम एक बहुत सुंदर अप्सरा का निर्माण करो, इतनी सुंदर होनी चाहिए कि अभी तक जो भी अप्सराएं हैं उनकी सुंदरता उसके सामने फीकी पड़ जाए। तो विश्वकर्मा ने एक बहुत सुंदर अप्सरा का निर्माण किया। ऐसा बताते हैं कि उसका जो शरीर था उसमें तिल मात्र भी ऐसा स्थान नहीं था जो सौंदर्य से परिपूर्ण ना हो, तिल मात्र भी। तो हर स्थान उत्तम था, इसीलिए उसका नाम ब्रह्मा जी ने दिया तिलोत्तमा। तिलोत्तमा मतलब तिल मात्र भी कहीं ऐसा स्थान नहीं है जो उत्तम नहीं है, इतनी सुंदर थी वो। और उसने आकर ब्रह्मा जी से पूछा कि बताइए क्या आदेश है मेरे लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ ये जो दोनों राक्षस हैं जरा इनमें झगड़ा करा दो, बस तुम्हारा यही काम है। तो बहुत सुंदर थी, और आप जानते हैं इस जगत में व्यक्ति सुंदरता के प्रति बड़ा मोहित हो जाता है, बाहरी सुंदरता के प्रति। गलती हम सब की यही है, सुंदरता के प्रति मोहित होना में कोई गलती नहीं है, लेकिन बाहरी सुंदरता में व्यक्ति मोहित होता है। अगर हमें मोहित होना है तो व्यक्ति के गुणों से मोहित होना चाहिए, उसकी भक्ति से मोहित होना चाहिए। हमें व्यक्ति की सुंदरता उसकी भक्ति से नापनी चाहिए, शरीर से नहीं, क्योंकि शरीर की सुंदरता ये केवल भ्रम में डालती है। गुणों की सुंदरता, भक्ति की सुंदरता भ्रम से परे ले जाती है। तो तिलोत्तमा को भेजा गया और उसका कार्य था इन दोनों में झगड़ा कराना। तिलोत्तमा आई, दोनों ने देखा। महाभारत में बड़े विस्तार से इसका वर्णन है, हम संक्षेप में बता रहे हैं। तो तिलोत्तमा को देखते ही जो पहले भाई थे, बड़े भाई, उन दोनों में से जो बड़ा था वो भागा, और उसने कहा इससे तो मैं विवाह करूंगा, लेकिन दूसरा भी आकर्षित हो गया। तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं मैं विवाह करूंगा। तो पहला कहने लगा कि अरे जब मैं विवाह कर रहा हूं तो तुम्हें इससे विवाह नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से दोनों में झगड़ा हो गया, एक स्त्री के लिए, एक सुंदर स्त्री के लिए। और फिर दोनों में इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। तो नारद मुनि ये कथा पांडवों को सुनाते हैं, किस लिए? कि वो दो थे, एक स्त्री थी, दोनों आपस में लड़ मरे, आप पांच हो और एक स्त्री है, तो ऐसा ना हो कि आप पांचों उस स्त्री के लिए लड़ लो। देखिए इस भौतिक जगत की सुंदरता जिससे व्यक्ति, हर व्यक्ति आकर्षित है, ये भगवान ने ऐसा कहना चाहिए रचना ही इसीलिए की है। तो बहुत आकर्षित होते हैं, लेकिन अगर ज्ञान हो, ज्ञान के चक्षु से देखा जाए तो ये सुंदरता से कोई प्रभावित नहीं होता। प्रभुपाद एक बहुत सुंदर कथा सुनाया करते थे। प्रभुपाद कहते थे एक बार एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी, एक व्यापारी, बड़ा धनी व्यापारी पहुंच गया, विवाह करना चाहता था, लेकिन ये साधु स्वभाव की थी। इसने कहा 7 दिन बाद आइएगा। वो चला गया, 7 दिन बाद आया, ये सोचकर कि वही सुंदर स्त्री, उससे मेरा विवाह होगा। 7 दिनों तक स्त्री ने कुछ औषधियों को लिया, दवाइयों को लिया, जिससे वो दिन भर उल्टी करती रही, और उसको उसने भर लिया एक मटके में। और जब 7 दिन तक कोई उल्टी करते रहे तो उसकी क्या स्थिति होगी? सारा सौंदर्य चला गया, उसकी आंखें अंदर हो गई, शरीर काला पड़ गया। 7 दिनों बाद ये व्यक्ति आए विवाह करने के लिए, तो जब देखा तो पहचाना नहीं। तो उस स्त्री ने कहा कि आपको जिससे आकर्षण था वो मेरे शरीर से बाहर चला गया, इसीलिए मेरा शरीर अब आकर्षित नहीं रहा, लेकिन वो आकर्षण मैंने भर कर रखा है मटके में आपके लिए, आप जाइए और उसको देख लीजिए। और वो व्यक्ति गया और उसने मटका खोला, आप सोच सकते हैं क्या उसकी अवस्था हुई होगी। प्रभुपाद कहते थे ये भौतिक जगत का सौंदर्य इतना ही है, बाहरी सौंदर्य जिससे हम सब प्रभावित हैं। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमः पायिनो नित्यास्ताम स्थितिक्षस्व भारत। इंद्रिया, मात्र अर्थात इंद्रिया, इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होने वाला आनंद, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये वो आनंद नहीं है जो हमें असली सुख प्रदान करे। भगवान कहते हैं ये जो आनंद है ये बहुत थोड़ा है, एक शुरुआत होती है उसकी और समाप्त तो हो जाता है, जो भी ये इंद्रियों के स्पर्श से, यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भगवान कहते हैं कि ये जो इंद्रियों के स्पर्श से आनंद उत्पन्न होता है यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते, केवल दुख प्रदान करता है। क्यों? आद्यंतवंत कौन्तेय, क्योंकि इसका आदि होता है और इसका अंत होता है, थोड़े समय के लिए रहता है चला जाता है। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसमें रमण नहीं करते हैं। फिर वो किसमें रमण करते हैं? मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो बुद्धिमान है वो रमण करते हैं मेरी कथाओं में, वो आनंद लेते हैं मेरी सेवा में। भगवान की सेवा, भगवान की कथा, ये हमें सतत आनंद प्रदान करती है। इसीलिए उस आनंद को जब व्यक्ति लेता है तो कभी तृप्त नहीं होता। भागवत में कहा गया है वयं तु न वितृप्याम, उत्तम श्लोक, जो उत्तम श्लोक भगवान हैं उनकी जो क्रियाएं हैं, उनके जो कार्य हैं, उनको सुनने से कभी हम संतुष्ट नहीं होते। तो इसीलिए इन इन कथाओं से, महाभारत रामायण की कथाओं से हमें सीखना चाहिए कि अगर हमें आकर्षित होना है तो बाहरी सौंदर्य से नहीं, व्यक्ति के गुणों से आकर्षित हो, शरीर से नहीं आत्मा से आकर्षित हो। बाहरी सौंदर्य को छोड़कर भक्ति को प्राप्त करें, इसीलिए श्री कृष्ण को केंद्र बनाएं जीवन का, तब हम हर एक जीव से प्रेम कर सकें। तो तिलोत्तमा के आने से वो राक्षस जिनको कोई देवता नहीं मार पा रहे थे, कोई गंधर्व, कोई किन्नर, चानर, कोई नहीं मार पा रहे थे, केवल एक झूठे सौंदर्य ने मार दिया। इसी तरह आत्मा, इसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। आत्मा को न इस जगत का भोग, न धन, न ऐश्वर्य, न संपत्ति कोई प्रभावित नहीं कर सकता। आत्मा को केवल एक चीज प्रभावित करती है और वो है श्री कृष्ण। लेकिन जब माया का पर्दा पड़ता है, आवृत्तम ज्ञानम एतेना, जब हमारा ज्ञान, हमारा ये ज्ञान कि हम भगवान के सेवक हैं, ये आवृत्त हो जाता है, ढक जाता है, भूल जाते हैं हम, तब फिर हम इन चीजों को, इन भोगों से प्रभावित हो जाते हैं। और जिस प्रकार उन दोनों की मृत्यु हुई, ऐसे ही हमारी भी आध्यात्मिक स्तर पर मृत्यु हो जाती है। तो ये कथा नारद मुनि ने बताई और उनसे कहा कि आप लोग एक नियम बनाइए आपस में, ताकि कभी भी आप में झगड़ा नहीं हो। तो उस समय नियम बनाया पांचों ने बैठकर कि हम में से हर एक भाई एक एक वर्ष के लिए द्रौपदी के साथ रहेंगे, और जिस समय एक भाई द्रौपदी के साथ है, अगर कोई दूसरा उस समय वहां पर आ जाए तो उसको 12 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। बड़ी कड़ी सजा, छोटी नहीं रखी, 12 वर्ष के लिए वनवास। सबने स्वीकार किया कि ठीक है, जब एक वर्ष तक एक भाई द्रौपदी के साथ होंगे, दूसरा भाई वहां प्रवेश नहीं करेगा उस महल में, और अगर किया तो 12 वर्ष का वनवास। समय बीतने लगा, एक समय एक वर्ष चल रहा था जहां युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के साथ थे। अर्जुन के पास एक ब्राह्मण आए भागते हुए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अर्जुन ने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा कि कुछ चोर मेरी गायों को ले जा रहे हैं, गोधन को ले जा रहे हैं, आप ही रक्षा कीजिए, मैं उनके साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं हूं। तो अब दो चीजें थी अर्जुन के लिए, ब्राह्मण की रक्षा करनी है, गायों की रक्षा करनी है। तो अर्जुन तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि वैदिक सभ्यता में ब्राह्मणों की, गायों की रक्षा की जाती है। ये चीजें, ये दोनों वैदिक सभ्यता को बढ़ाते हैं, ब्राह्मण ज्ञान देते हैं और गाय तो बहुत सारी चीजों को प्रदान करती है, दूध देती है, घी जिससे निकलता है, यज्ञ इत्यादि हो सकते हैं। तो अर्जुन ने कहा अभी आता हूं, लेकिन तभी अर्जुन को याद आया कि उसका धनुष, उसके बाण, उसके सारे अस्त्र शस्त्र उस स्थान पर रखे हैं जहां युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ हैं। अब दुविधा में पड़ गया अर्जुन, अगर मैं अंदर जाता हूं तो मुझे 12 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा, मैं नियम तोड़ता, और अगर अंदर नहीं जाता, ब्राह्मण को कह दूं मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे सारे अस्त्र शस्त्र वहां हैं, तो फिर मुझे गोहत्या का पाप लगेगा, ब्राह्मण का श्राप लगेगा, और इतना ही नहीं, युधिष्ठिर महाराज के नाम पर धब्बा लग जाएगा कि युधिष्ठिर राजा होते हुए गायों को बचा नहीं सके, ब्राह्मणों की सेवा नहीं कर सके। तो ठीक है, मुझे वनवास जाना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के नाम पर धब्बा नहीं लगने दूंगा। और इस बात को सोचकर वो उस स्थान में, उस महल में प्रवेश कर गए। वो गए, उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया, उन्होंने प्रार्थना की युधिष्ठिर महाराज से, धनुष बाण उठाया और चले गए। और फिर उन्होंने जाकर जो चोर गायों को ले जा रहे थे उनको रोका, उनको परास्त किया और ब्राह्मण की गाय वापस लेकर आकर ब्राह्मण को दी। ब्राह्मण बहुत खुश हो गया, आशीर्वाद दिया। अब जब वापस आए तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि क्षमा कीजिए, मैंने नियम तोड़ा है, इसीलिए मैं आज अभी 12 वर्ष के लिए वनवास जाऊंगा। तो युधिष्ठिर महाराज एकदम सुनकर घबरा गए, अरे ये क्या कह दिया, 12 वर्ष के लिए वनवास। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, देखो जब बड़े भाई पत्नी के साथ बैठे हों तो छोटा भाई जो पुत्र के समान है, अगर वो आ भी जाए तो कोई गलती नहीं है। हाँ, छोटा भाई हो तो बड़े भाई को प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो तुम आ गए तो कोई गलती नहीं, और मैंने कोई अपराध नहीं माना इसका, तो इसलिए तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं रहो। तो अर्जुन ने कहा नहीं, मुझे हर अवस्था में धर्म का पालन करना है, मैं धर्म को त्याग नहीं सकता। देखिए पहले के समय में जो राजा महाराजा भी हुआ करते थे या जितने भी लोग हम जिनका वर्णन सुनते हैं, वे धर्म की खातिर अपने स्तर पर धर्म को बनाए रखने के लिए और समाज के स्तर पर धर्म को बनाए रखने के लिए किसी भी कष्ट को सहने के लिए तैयार थे। वो ये नहीं सोचते थे कि मेरे जीवन में कष्ट आएगा इसलिए मैं धर्म को त्याग दूं। आज का मनुष्य उसने अपनी बुद्धि को बड़ा सीमित कर लिया है। आज का मनुष्य अपने बारे में ज्यादा सोचता है, वो ये सोचता है कि अगर मेरे लिए सब ठीक है तो बस धर्म मेरे लिए है, मैं धर्म के लिए नहीं। पहले के समय में ऐसा नहीं था, लोग ये नहीं सोचते थे कि धर्म मेरे लिए है अर्थात मैं जैसे चाहूं उसको घुमा सकता हूं। नहीं, मैं धर्म के लिए हूं इसीलिए मुझे धर्म की रक्षा करनी है। धर्मो रक्षति रक्षितः। तो हर व्यक्ति धर्म की रक्षा करता था, अपने स्तर पर धर्म का अच्छी तरह पालन करके, समाज के स्तर पर धर्मों के नियमों को बनाए रखकर। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो धर्म का पालन करूंगा, मुझसे गलती हुई है इसीलिए मैं जाऊंगा। तो फिर अर्जुन 12 वर्ष के लिए वनवास में चले गए और उनके साथ बहुत से उस वहां पर स्थान में रहने वाले ऋषि मुनि बहुत से लोग गए। ऐसा वर्णन है कि कई ऋषि, कई ब्रह्मचारी, कई पुरोहित, कई पंडित वेद इत्यादि के पारंगत, यज्ञ कराने वाले, वो सब गए अर्जुन के साथ 12 वर्षों का वनवास। खैर अर्जुन निकल गए, अलग अलग स्थानों में घूमने लगे। अब निकले थे खांडव प्रस्थ से, इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली के पास। अब फिर वहां से चलते चलते आए हरिद्वार। तो हरिद्वार में गंगा के तट पर वहां पर कई ब्राह्मणों को उन्होंने लगाया यज्ञ इत्यादि करने के लिए। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो यज्ञ इत्यादि कर रहे थे, गंगा में स्नान करते। एक समय जब अर्जुन गंगा में स्नान करने के लिए उतरे तो वहां पर एक नाग कन्या थी जिसका नाम था उलूपी। तो वो नागों के राजा की पुत्री थी और उनका स्थान वहीं जल में था नीचे। तो उस कन्या ने, नाग कन्या ने अर्जुन को देखा और अर्जुन को देखकर बड़ी आकर्षित हो गई, बहुत आकर्षण हो गया उसको अर्जुन से, और उसने सोचा मुझे इससे विवाह करना है। तो जैसे ही अर्जुन ने प्रवेश किया नदी में, उसने अर्जुन को पकड़ा और पकड़कर नीचे खींचकर अपने लोक में ले गई, नागलोक में। तो वहां जाकर अर्जुन ने विचार किया, अर्जुन ने पूछा, तो खैर उसने कहा कि अगर आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा आकर्षण आपके प्रति बहुत है, अगर आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगी, अब आपको मेरी रक्षा करनी है। तो उस समय अर्जुन ने उससे विवाह किया और उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था ईरावान। ये अर्जुन के एक पुत्र हुए थे। अब आप लोग देखिए अर्जुन की कितनी शादियां हुई, अभी काउंट करना शुरू कीजिए। तो अभी तक कितनी शादी हुई अर्जुन की, दो, एक नहीं दो। पहली कौन सी? हाँ, द्रौपदी से। हाँ, तो द्रौपदी से एक विवाह किया, अब दूसरा विवाह उलूपी से। और फिर कुछ समय रहे उसके साथ, बाद में उलूपी ने आकर उनको बाहर वापस गंगा के तट पर छोड़ दिया। और जाते समय उलूपी ने उनको एक वचन दिया कि आपको मैं वचन देती हूँ कि जल में, ये आशीर्वाद दिया मान लीजिए, या उन्होंने कहा कि जल के जितने प्राणी हैं वो आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, जल जितने भी जलचर हैं वो कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, जल में भी आपकी शक्ति उतनी ही बनी रहेगी जितनी आपकी शक्ति पृथ्वी पर है। तो फिर अर्जुन वहां से चले गए। तो वहां से आगे फिर अर्जुन गए हिमालय में, हिमालय में कुछ समय रहे, कई स्थानों में गए, और फिर हिमालय से नीचे आकर पूर्व दिशा की ओर चले गए। और चलते चलते मणिपुर में आए। मणिपुर जानते हैं आप लोग? तो महाभारत में मणिपुर का नाम आया है, कितना महान स्थान होगा। उस समय भी उसको मणिपुर ही कहते थे, आज भी मणिपुर कहते हैं। तो मणिपुर में आए अर्जुन, वहाँ के जो राजा थे तो उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था चित्रांगदा। तो अर्जुन बड़े आकर्षित हो गए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा ने एक शर्त रखी। राजा ने कहा कि हमारे वंश में हमें शिवजी से एक वरदान प्राप्त हुआ है कि आपको एक एक संतान होगी, एक ही, चाहे पुत्र हो या पुत्री। तो अभी तक सबको पुत्र हो रहा था, लेकिन अब मुझे जो संतान हुई है वो पुत्री है, और शिव जी ने वरदान दिया एक ही होंगे, तो अब मेरे और पुत्र नहीं हो सकते। इसीलिए मैंने ये शर्त रखी है कि जो भी मेरी पुत्री से विवाह करेगा उसका जो पुत्र होगा वो मेरा पुत्र कहलाएगा, वो मेरे पुत्र के रूप में यहाँ पर राज्य करेगा। तो आपको अगर ये पहले उन्होंने पूछा कि आप हैं कौन, अचानक आ गए, विवाह करना चाहता हूँ, तो उन्होंने अपना परिचय दिया तो बड़े प्रसन्न हुए। और फिर उन्होंने कहा कि आपका जो पुत्र होगा वो मेरे पुत्र के रूप में इस राज्य में राज्य करेगा। अर्जुन ने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने तीसरा विवाह किया, किससे? चित्रांगदा। और उससे विवाह किया, कुछ समय रहे वहां पर, एक वर्ष तक, और फिर उसको संतान उत्पन्न हुई। 3 वर्ष तक शायद वहां रहे थे वे। तो संतान उत्पन्न हुई और जिसका नाम था बभ्रुवान, वहां पर जो उसका पुत्र हुआ उसका नाम हो बभ्रुवान। और फिर थोड़े समय के लिए अर्जुन आगे की ओर गए, फिर वापस आए थे, दक्षिण भारत की ओर गए और फिर वापस आए। तो दक्षिण भारत में जब वो आए तो एक स्थान पर वे जा रहे थे, तो वहां पर बहुत सुंदर सुंदर तीर्थ स्थान थे, और एक स्थान था जहां पर 5 बहुत अच्छे तीर्थ थे, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के नाम पर, जैसे सौभद्र तीर्थ जो सौभद्र ऋषि के नाम पर था, या भरद्वाज तीर्थ जो भरद्वाज ऋषि के नाम पर था, पौलत्स्य तीर्थ जो पौलत्स्य ऋषि के नाम पर था, ऐसे कई 5 तीर्थ थे। तो जितने भी ऋषि मुनि थे बाकी तीर्थों में स्नान करते थे, उन 5 तीर्थों में कोई नहीं जाता था। तो जब अर्जुन को पता चला तो अर्जुन ने पूछा कि भाई आप लोग इतने सुंदर वो तीर्थ हैं, वहां पर आप क्यों नहीं जाते हैं, क्यों स्नान नहीं करते उन तीर्थों में? तो उन्होंने कहा कि वहां पर 5 मगरमच्छ हैं एक एक तीर्थ में, इसलिए हम वहां नहीं जाते, जो भी जाते हैं उसको वो खा लेते हैं। तो अर्जुन ने कहा अच्छा। तो अर्जुन ने कहा मैं वहां पे जाके स्नान करूंगा। तो सबने रोका, अरे अरे क्या कर रहे हो? सब सोचने लगे ये भी नया नया सन्यासी बना है, नया नया ऋषि बना है, क्योंकि अर्जुन घूम रहे थे तो क्षत्रिय के रूप में तो नहीं थे, तो ये नया नया बना है, इसको बड़ा शौक है। तो सबने रोका, अरे रुक जाओ वहां नहीं जाओ। लेकिन अर्जुन तो जानते थे, अर्जुन के लिए एक चुनौती थी। तो अर्जुन चले गए और उन्होंने सौभद्र तीर्थ में स्नान किया। जैसे ही स्नान किया तो नीचे से मगरमच्छ ने पकड़ लिया उनको, अर्जुन का पांव पकड़ लिया। और अर्जुन को अभी थोड़े समय पहले क्या वरदान मिला था? पानी का कोई भी प्राणी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया, अर्जुन उसको खींचते हुए, पांव पकड़ा हुआ है और अर्जुन उसको खींचते हुए बाहर लेकर आ गए। क्या शक्ति होगी अर्जुन ने, सोचिए, बड़े बड़े हाथी, गजेंद्र का जब पांव पकड़ लिया था एक मगरमच्छ ने तो बाहर नहीं आ पाया था, अपने को छुड़ा नहीं पाया, लेकिन अर्जुन पानी के अंदर उसको पकड़ लिया पांव को, अर्जुन खींचते हुए उसको बाहर लेकर आ गए। उन्होंने सोचा बाहर जाके युद्ध करेंगे, यहाँ नहीं, खींचते हुए लेकर आए। तो जैसे ही बाहर लेकर आए उस मगरमच्छ को, तो वो मगरमच्छ फिर एक बहुत सुंदर अप्सरा में बदल गया और उसका नाम था वर्गा। दरअसल ऐसा हुआ था कि पांच अप्सराएं थीं, उन्होंने एक दिन एक ब्राह्मण के प्रति अपराध कर दिया। वे लोग जा रही थीं, वे कुबेर की दासी थीं, तो कुबेर के पास जा रही थीं, तो उन्होंने देखा एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा तेज है उसका, तो जाके उससे हंसी मजाक कर दिया। ब्राह्मण प्रभावित तो नहीं हुआ, लेकिन उसने श्राप दे दिया कि आपको अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार है, घमंड है, तो आप ऐसा कीजिए, आप पांचों के पांचों और सुंदर हो जाइए। मतलब सारी सुंदरता चली गई उनको। मगरमच्छ क्या सुंदर होता, देखा आपने मगरमच्छ कभी? कोई सुंदर नहीं उसका, कहीं से कोई सुंदरता नहीं है उसकी, कोई अंग देख लो कोई सुंदर नहीं है। तो उनको श्राप दे दिया। देखिए कभी कभी व्यक्ति को अपने बल, अपनी कला, अपने ऐश्वर्य, अपनी संपत्ति का अभिमान हो जाता है और तब वो अपराध कर बैठता है। तो यहां इन अप्सराओं को अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान हो गया कि हम बड़ी सुंदर हैं, हम इस ब्राह्मण को प्रभावित कर देंगे, तो उसने श्राप दे दिया। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी चीज का अभिमान नहीं होना चाहिए, ये जान लेना चाहिए कि जो भी चीज हमारे पास है, फिर वो चाहे हमारी कला हो, हमारी संपत्ति हो, हमारा ऐश्वर्य हो, हमारी सुंदरता, यश, बल, कुछ भी क्यों ना हो, ज्ञान ही क्यों ना हो और वैराग्य ही क्यों ना हो, ये जान लीजिए कि ये केवल श्री कृष्ण के कारण है, श्री कृष्ण की कृपा है, इसीलिए हम कुछ कर पा रहे हैं, इसीलिए हम कुछ बोल पा रहे हैं। तो जब ऐसे भाव में हम रहेंगे तो कभी कृष्ण को भूलेंगे नहीं। लेकिन जहां अहंकार आ जाता है, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत यशवान हूं इत्यादि, तो व्यक्ति अपराध कर बैठता है, फिर वो भक्तों को, ब्राह्मणों को, अन्य लोगों को कुछ नहीं समझता। तो इन्होंने भी अपराध कर दिया। फिर उन्होंने क्षमा याचना की कि अरे गलती हो गई, तो उन्होंने कहा अभी तो मैंने श्राप दे दिया है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, अब तो आपको बनना ही पड़ेगा। तो पांचों आ रही थी वापस, तो नारद मुनि मिले। हाँ, उसने एक उनके लिए थोड़ी कमी कह दी, उसने कहा था आपको बहुत लंबे समय तक ये बनना पड़ेगा मगरमच्छ, लेकिन जब उन्होंने क्षमा याचना की तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस समय को कम कर देता हूं, आपको उतने समय तक मगरमच्छ बनना पड़ेगा जब तक कोई पुरुष आकर आपको बाहर खींच नहीं लेता, पानी से बाहर खींच देगा तब आप अपने स्वरूप को फिर से प्राप्त करोगे। तो वो दुखी थी, आ रही थी, तो नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने पूछा क्या हुआ, आप सब बड़ी दुखी हैं, सर लटका हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमें श्राप मिल गया, हम बहुत दुखी हैं, हम तो मगरमच्छ बनना नहीं चाहती। तो नारद मुनि ने कहा चिंता नहीं करो, बस जाओ वहां पर थोड़े समय के लिए रहो, अभी अर्जुन आने वाला है। नारद मुनि को सब पता रहता है, नारद मुनि का जो चैनल है, न्यूज चैनल, वो बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा प्रभावी है। हमारे जो न्यूज चैनल होते हैं वो सब कुछ होने के बाद पहुंचते हैं वहां पर, लेकिन नारद मुनि का चैनल कुछ होने के पहले ही दिखा देता है ये होने वाला है, है ना। हमारे चैनल्स नहीं दिखा सकते, नेपाल में भूकंप आया, हमारे कोई चैनल ने पहले से दिखाया नहीं कि देखिए ये बिल्डिंग अब आप देखते रहिए ये गिरने वाली है, नहीं, सब होने के बाद फिर चैनल्स दिखा रहे हैं सारा हो गया, बर्बाद हो गया। नारद मुनि का चैनल पहले ही दिखा देता है। तो नारद मुनि ने ऑन किया टीवी, बोले देखिए ये आएगा अर्जुन, ऐसे आने वाला है, तो आप उस स्थान पर चले जाइए जल्दी से। तो फिर ये पांचों स्थान पर मगरमच्छ बनकर रह रहे थे। तो फिर इस अप्सरा ने कहा और चार भी हैं, आप उनको भी खींच कर बाहर निकालिए, उनका भी उद्धार होगा। तो फिर अर्जुन ने उनको भी खींच कर बाहर निकाला और फिर वे अप्सराएं बनी। हाँ, अर्जुन ने विवाह नहीं किया उनसे, वो अप्सराएं थी, वापस स्वर्ग चली गई। और अर्जुन फिर वापस आए चित्रांगदा के पास मणिपुर, कुछ समय रहे, उन्होंने देखा कि उनका जो पुत्र है अब वो राजा के पुत्र के रूप में रह रहा है। तो फिर उन्होंने चित्रांगदा से कहा कि आप यहीं रहिए, इस पुत्र की देखभाल कीजिए, आगे चलकर जब हम राजसूय यज्ञ करेंगे तो उस राजसूय यज्ञ में सारी पृथ्वी के राजा आएंगे अपनी अपनी भेंट लेकर महाराज युधिष्ठिर को सम्राट घोषित करने के लिए, और उस समय आपके पिता भी आएंगे, तब आप उनके साथ आ जाना, तब आप वहाँ पर मेरे जितने भी भाई हैं, मेरी माता इत्यादि, उनसे तब आप मिलना, तब तक आप यहीं पर रहो। तो चित्रांगदा को उन्होंने मणिपुर में ही छोड़ दिया और फिर वो आगे चले। फिर ऐसे कहते हैं कि फिर अर्जुन गोकर्ण आए थे, गोकर्ण यहाँ पास में ही है, बहुत निकट है। तो फिर अर्जुन गोकर्ण आए वहाँ से, मणिपुर से होते होते, अब इस समय बहुत सारा समय बीत गया, 12 वर्ष निकल गए। आप सोचिए, ये अर्जुन कोई फ्लाइट से नहीं आ रहे थे कि वहाँ से निकले यहाँ पहुँचे, यहाँ से निकले, ये सब पैदल चल रहे थे। तो कई वर्ष बीत चुके हैं अभी तक, जब तक वो गोकर्ण आए। और फिर यहाँ से फिर वो पश्चिम दिशा की ओर गए, प्रभास क्षेत्र, द्वारका की ओर। तो अब वो प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। तो प्रभास क्षेत्र में अब यहाँ से कथा प्रारंभ करते हैं सुभद्रा के हरण की, कि कैसे सुभद्रा का हरण हुआ। तो सुभद्रा के हरण की 3 कथाएं हैं, एक जो महाभारत में कही गई है, दूसरी जो श्रीमद् भागवत में कही गई है, ये दोनों अलग कथाएं हैं, और तीसरी जो श्रीपाद मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्यों में कहते हैं। तो 3 कथाएं हैं, इन तीनों का वर्णन करेंगे। बहुत सुंदर कथा है किस प्रकार सुभद्रा का हरण हुआ। तो पहला वर्णन है महाभारत का, करते हैं पहला वर्णन कि कैसे सुभद्रा का हरण किया। तो महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन आए प्रभास क्षेत्र में, वहां पर श्री कृष्ण थे, वे लोग कुछ उत्सव मनाने आए थे। तो श्री कृष्ण ने देखा अर्जुन को, बहुत प्रसन्न हुए, कुछ समय रहे, फिर श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर द्वारका में आए। और द्वारका में लोगों ने बहुत स्वागत किया कि अरे अर्जुन आए हैं, तो बड़ा स्वागत हुआ अर्जुन का। फिर अर्जुन वहाँ कुछ समय रहे और वहाँ एक उत्सव के समय उन्होंने सुभद्रा को देखा, तो सुभद्रा की ओर आकर्षित हुए, श्री कृष्ण जान गए। तो फिर अर्जुन से उन्होंने पूछा, तो अर्जुन ने कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो फिर उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखो, अगर तुम्हें विवाह करना है तो विवाह की अलग अलग पद्धतियाँ हैं। एक विवाह पद्धति है स्वयंवर, जहाँ जो राजकुमारी है वो अपना वर चुनती है, और ऐसी कई पद्धतियाँ हैं। और एक पद्धति है जैसे मैंने किया, कृष्ण ने क्या किया, उठा कर ले आए थे किसको, रुक्मिणी को। तो आप भी ऐसा ही करो, अपनी ही बहन है सुभद्रा, और अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम उसका हरण कर लो, ले जाओ उसको भगा के, और ये लो मेरा रथ। यानी आदमी देखो अपनी गाड़ी भी दे रहा है, चाबी भी दे रहा है, पेट्रोल भी डाल के दिया, ले जाओ, तो मेरा रथ ले जाओ और सुभद्रा को लेकर चले जाओ और भगा लो उसको, नहीं तो ये लोग यहाँ पर आपको विवाह नहीं करने देंगे। तो अर्जुन ने कहा ठीक है। तो अर्जुन सुभद्रा को लेके चले गए। अब जैसे ही लेके गए, हंगामा हो गया, सभा बैठी, सारे लोग आ गए, तैयार करो रथ, तैयार करो घोड़े, तैयार करो अस्त्र शस्त्र, तैयार करो। बलराम जी भी बड़े गुस्से में थे, छोड़ेंगे नहीं इसको, अर्जुन ने किया कैसे ऐसे। तो सब सभा में केवल श्री कृष्ण चुप बैठे थे, बाकी सब बोल रहे हैं चलो मेरा रथ तैयार करो, कहाँ है मेरा अस्त्र लाओ, और हो भी गए, सारी सेना तैयार हो गई, अब जाना है बस। तो बलराम जी ने देखा कृष्ण कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, सारे लोगों ने बोल दिया। तो बलराम जी ने सबको शांत किया, बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी अभी युद्ध नहीं करना है। तो सब ने कहा क्यों, क्या हुआ, सब तैयार थे तलवार वलवार लेकर। बलराम जी ने कहा कृष्ण ने कुछ बोला नहीं है अभी तक, जब तक कृष्ण नहीं कहेंगे हम लोग कैसे कुछ कर सकते हैं। तो सबने कहा ये बात तो सही है। तो फिर सब कृष्ण की ओर मुड़े कि आप बताइए क्या करना है। तो कृष्ण ने कहा कि देखो, अगर अर्जुन सुभद्रा से विवाह कर रहा है तो इसमें हमारा अपमान क्या हुआ? हमारा तो मान बढ़ गया कि अर्जुन जैसा व्यक्ति हमारे परिवार से संबंध स्थापित करना चाहता है, तो बड़े गर्व की बात है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि अर्जुन को कोई हरा नहीं सकता, और अब तो विशेष क्योंकि वो मेरे रथ पर है। तो एक तो मेरा रथ है, मेरे अस्त्र शस्त्र हैं, ऊपर से वो अर्जुन है, तो उसको कोई हरा नहीं सकता। तो भगवान ने थोड़ा सा डराया, मान लीजिए आप लोग उससे युद्ध करने जाते हैं और वो अकेला आपको सबको हरा कर भेज देता है, तब आपका मान होगा या अपमान होगा? सबने कहा तब तो बड़ा अपमान हो जाएगा, तो इससे अच्छा है अभी प्रेम से जाइए, उसको बुला लाइए, उसका विवाह करा देते हैं, ताकि बहुत अच्छी तरह से सब कुछ ठीक हो जाए। सबने कहा जो कृष्ण कहें वो ठीक है। तो फिर सब लोग जाकर दोनों को ले आए, उनका विवाह हुआ, कुछ समय तक वहां रहे, और उसके बाद फिर इंद्रप्रस्थ वापस चले गए। ये एक वर्णन है सुभद्रा का। दूसरा वर्णन बहुत सुंदर है जो भागवत में किया है, और उसी को थोड़ा सा बदल कर मध्वाचार्य जी ने प्रस्तुत किया है, तो दोनों को मिलाकर आपको बताते हैं। अर्जुन घूमते घूमते प्रभास क्षेत्र में आए। अब काफी समय से, कई वर्षों से घूम रहे थे, तो रूप उनका सन्यासी का हो गया था, मान लीजिए ऐसे ही वैरागी जैसे घूम रहे हैं। प्रभास क्षेत्र में आए तो उन्होंने सुना कि बलराम जी की इच्छा है कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो। देखिए बलराम जी भी दुर्योधन से उसका विवाह हो, तो लेकिन किसी को यह पसंद नहीं था। सुभद्रा के पिता भी ये नहीं चाहते थे। सुभद्रा के पिता कौन है? सुभद्रा के पिता कौन है? हाँ, वसुदेव। हाँ, वसुदेव की पुत्री। और माता कौन है? रोहिणी है या देवकी है? रोहिणी या देवकी? पक्का? महाभारत में देवकी लिखा है, लेकिन अन्य स्थान पर एक जगह रोहिणी भी लिखा है। तो वसुदेव की पुत्री है सुभद्रा। तो वसुदेव भी नहीं चाहते थे कि इसका विवाह, कौन चाहेगा दुर्योधन से विवाह करना उस समय। लेकिन केवल बलराम जी की इच्छा थी। क्यों? क्योंकि बलराम जी सोचते थे बहुत अच्छा लड़का है, बढ़िया, एकदम कुरु वंश का है, शक्तिशाली है, गदा इतनी अच्छी चलाता है मुझसे, और मेरा शिष्य है। गदा चलाना उसने, दुर्योधन ने बलराम जी से सीखा था, तो बलराम जी बड़ा प्रेम करते थे, तो बहुत अच्छा है, बड़ा मेरा लाल, मेरा जो भी है। तो उस समय तो बलराम जी, और बलराम जी के सामने कोई बोलने वाला नहीं था। द्वारका में जब बलराम जी ने कह दिया कि इसका विवाह दुर्योधन से होगा, तो वसुदेव की भी हिम्मत नहीं कि वो भी बोल दें, क्योंकि बलराम जी बहुत शक्तिशाली। इस वर्ष में आप जानते, बलराम जी बड़े भाई के रूप में आए हैं, कृष्ण भी कुछ नहीं बोल पाते थे उनके सामने, क्योंकि बड़े भाई हैं, कृष्ण को भी चुप रहना पड़ता था। जब रामचंद्र जी आए थे तो बलराम जी छोटे भाई बनकर आए थे, लक्ष्मण के रूप में, और उस समय बहुत तकलीफ हुई थी उनको, बड़ा कष्ट। कुछ करना चाहते थे रामचंद्र जी, बड़े भाई, और आदेश देते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। जैसे दशरथ ने कह दिया कि राम को वनवास, अच्छा नहीं लगा लक्ष्मण को, अभी मार देता हूं, रामचंद्र जी का चुप रहना। सीता के लिए रामचंद्र जी ने कहा युद्ध के बाद, चलो जाओ लकड़ी इकट्ठी करके लाओ, सीता की अग्नि परीक्षा होगी, सीता अग्नि में प्रवेश करेंगी। लक्ष्मण को इतना गुस्सा आया, लक्ष्मण विचार इतने, वो सोचता था मैं इतना युद्ध किया, इतना सब किया, अब मैं ही खुद चिता जलाऊं सीता की, तो जाने के लिए तैयार नहीं थे। रामचंद्र जी ने ऐसे देखा, जाना पड़ा, बड़े भाई है, जो कहें वो करना है। बाद में कहा सीता को छोड़ाओ, जंगल में छोड़ाओ सीता को, सब कुछ हो गया था, राज्य अभिषेक हो गया, अच्छे से राज्य में रह रहे हैं, एक धोबी ने कुछ कह दिया, जाओ सीता को छोड़ा। वो भी लक्ष्मण को ही जाना पड़ा छोड़ने के लिए। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को ही कहा जाओ तुम छोड़ कर। लक्ष्मण को बड़ा दुख हुआ, कह कोई गलती नहीं सीता की, और वो भी पता नहीं सीता को। ऐसे नहीं कि बिठाकर सब समझाया था कि देखो ऐसी तकलीफ है, तुम थोड़ा समय जंगल में रहो, कुछ नहीं। सीता ने कहा था कि मैं जंगल बहुत दिनों से नहीं गई, विहार करना चाहती हूँ, ऋषि मुनियों के दर्शन करना चाहती हूँ। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को इसी बहाने छोड़कर आ जाओ। और लक्ष्मण जब जा रहे हैं तब भी नहीं बताया सीता को। सीता बड़ी प्रसन्नता से जा रही है कि मैं ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए जा रही हूँ, वन में थोड़ा सा विचरण करूंगी। वहां पहुंचकर उतर कर लक्ष्मण ने कहा ठीक है आप यहीं रहिए, मैं वापस जा रहा हूँ। तो सीता ने कहा क्यों? तो रामचंद्र जी का आदेश है, आप यहीं रहेंगे। तो इन सब जगहों पर बहुत क्रोध, ऐसे बहुत जगह पर क्रोध आया था लक्ष्मण। तो लक्ष्मण ने प्रण लिया था अगली बार छोटा भाई नहीं बनूंगा, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए जब कृष्ण आए तो बलराम बने, जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो नित्यानंद प्रभु बड़े भाई बने, पहले आए उनसे। तो कोई उनके विरुद्ध बोलने वाला नहीं, बलराम जी के विरुद्ध। कृष्ण भी नहीं बोल रहे कि अरे दुर्योधन कोई व्यक्ति है शादी करने के लिए। लेकिन तो जब अर्जुन को पता चला तो अर्जुन ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कृष्ण से बात की, तो कृष्ण ने कहा एक काम करो, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, ये तो बड़े भाई हैं, तो कुछ उपाय करना चाहिए। तो उस समय अर्जुन एक सन्यासी के रूप में था, तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, अभी चतुर्मास शुरू होने वाला है, चतुर्मास में सन्यासी कहीं जाते नहीं हैं। चतुर्मास मतलब बारिश के चार महीने। इन चार महीनों में जितने भी साधु हुआ करते थे पहले, वे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते थे, एक ही स्थान पर बैठ जाते थे, फिर बारिश खत्म होने के बाद फिर आगे बढ़ते थे। तो उन्होंने कहा चतुर्मास है, तुम एक सन्यासी का रूप ले लो। तो सन्यासी के रूप में उनको द्वारका लेकर आए, बलराम जी के पास गए कि देखिए सन्यासी हैं। बलराम जी पहचान नहीं पाए अर्जुन है। बलराम जी ने प्रणाम किया, ऐसा वर्णन है कि बलराम जी ने जब पहली बार अर्जुन से मिले तो पूरा प्रणाम किया उनको, और अर्जुन बलराम जी पूरा प्रणाम कर रहे, तो अर्जुन ने भी प्रणाम किया। तो बलराम जी अरे ये क्या कर रहे हैं, सन्यासी को कोई आके प्रणाम करो, सन्यासी भी उनको प्रणाम कर दे। तो बलराम ने कही नहीं नहीं आप बड़े श्रेष्ठ हैं, आप बड़े महान हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। अर्जुन बोल नहीं पाए, मैं तो अर्जुन हूँ सन्यासी नहीं हूँ, आपको प्रणाम करना है मुझे, आप बड़े हैं। तो ऐसे मिले थे। तो उसके बाद बलराम जी ने कृष्ण से कहा कि देखो ये सन्यासी आए हैं, इनकी सेवा बड़ी अच्छी होनी चाहिए, चतुर्मास यहाँ रहेंगे चार महीने, तो अच्छी सेवा होनी चाहिए, कोई सेवा में कमी नहीं हो। तो एक काम करो, सुभद्रा के महल में इनको रख दो, सुभद्रा इनकी सेवा करेंगी। तो कृष्ण ने कहा क्या बात करते हैं आप, ठीक है ये सन्यासी हैं, लेकिन देख रहे हैं ये युवक हैं, कोई वृद्ध सन्यासी नहीं है, और एक सन्यासी को कन्याओं के घर में रख देना है तो ठीक नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, खुद ही लाए थे लेकिन कह रहे हैं बलराम जी से। तो बलराम जी ने कहा तुम्हें क्या हुआ है कृष्ण? अरे वो सन्यासी है, वैरागी है, उसको रख दे, हमारे साथ में रहेगा, हम लोग आते जाते रहते, कभी यहाँ गए कभी वहाँ गए, हम लोग व्यवस्थापन देखते हैं, उनकी सेवा नहीं हो पाएगी, सुभद्रा ठीक से वहाँ सेवा करेगी, और फिर सन्यासी है वैरागी है, उससे क्या? तो ऐसी कोई बात नहीं, वहीं पर रख दे। तो कृष्ण का देखिए मैं तो रख देता हूँ, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप हैं, मैं नहीं हूँ। पहले ही कृष्ण बाहर हो गए, मालूम था बाद में क्या होने वाला है, पहले ही बाहर हो गए। कृष्ण ने कहा जो भी होगा इसके जिम्मेदार आप हैं। उन्होंने कहा हाँ चिंता मत करो, भेज दो, ठीक आपके कहने पर भेज रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो कृष्ण ने भेज दिया। अब सुभद्रा के महल में अन्य भी स्त्रियाँ थी, तो वहाँ रहने लगे, सुभद्रा इनकी सेवा कर रही हैं सन्यासी की, और ये कृष्ण की कथाएँ उनको बताया करते, अलग अलग कथाएँ में, यहाँ की कथा वहाँ की कथा। सुभद्रा का भी आकर्षण था अर्जुन के प्रति, सुभद्रा के भी मन में था कि वो अर्जुन से विवाह करे, लेकिन बोल नहीं पाती थी। तो जब ये अलग अलग जगह की बातें बताने लगे तो सुभद्रा ने एक दिन इनसे पूछा कि आपने पांडवों को देखा है, नाम सुना है पांडवों का? अर्जुन ने कहा हाँ, अर्जुन मतलब सन्यासी, सन्यासी ने हाँ हाँ मैं जानता हूँ, पांडवों को देखा आप मिले? हाँ मिला हूँ। अच्छा उनके बारे में बताइए। दरअसल सुभद्रा केवल अर्जुन के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन सीधे तो नहीं पूछ सकती, थोड़ी तो लज्जा होनी चाहिए, ऐसे कैसे पूछे अर्जुन को देखा वो कैसे दिखता है। तो उन्होंने कहा कि पांडवों के विषय में बताइए। तो अर्जुन भी जान गए कि ये क्या पूछना चाहती है, इसलिए अर्जुन को छोड़कर बाकी सबका वर्णन उन्होंने किया। युधिष्ठिर महाराज बड़े श्रेष्ठ हैं, ऐसे दिखते हैं, और फिर भीम और फिर नकुल और सहदेव और कुंती महारानी, उनका तो कहना ही क्या। अब सुभद्रा सोच रही थी कब अर्जुन के बारे में बोले, और वो अर्जुन के बारे में बोले ही नहीं। तो फिर सुभद्रा ने पूछ लिया, अर्जुन आपने अर्जुन से मिले, आप अर्जुन को जानते हैं? बोले मैं नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा अर्जुन को? बोले हाँ जानता हूं अर्जुन को। तो अर्जुन कैसे हैं, अर्जुन के विषय में बताइए। तो उन्होंने कहा तुम मिलना चाहती हो अर्जुन से? उन्होंने कहा एकदम घबरा गई, मिलना चाहते मतलब? बोले हाँ अर्जुन से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं अभी इसी क्षण अर्जुन को तुम्हारे सामने ला सकता हूँ। सुभद्रा बहुत प्रसन्न हो गई, हाँ मैं मिलना चाहती हूँ अर्जुन से। तो उस समय उन्होंने बताया कि मैं ही अर्जुन हूँ। सुभद्रा को एकदम विश्वास नहीं हुआ। दरअसल जब से वो आए थे सुभद्रा का आकर्षण था उनकी, और ऐसा श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है कि सुभद्रा भी आकर्षित हो गई थी क्योंकि बहुत सुंदर थे अर्जुन। तो उस समय सुभद्रा ने कहा, और फिर अर्जुन ने कहा कि चलो हम विवाह कर लेते हैं। तो सुभद्रा ने कहा नहीं ऐसे नहीं, मेरा अगर विवाह होगा तो कम से कम कृष्ण होने चाहिए, मेरे पिता होने चाहिए, मेरी माता होने चाहिए। ये वो समय था जब ये लोग सब कहीं दूर गए हुए थे, कृष्ण बलराम वसुदेव सब कहीं दूर गए हुए थे उस समय। तो अर्जुन ने स्मरण किया कृष्ण का, तो कृष्ण तुरंत वहां आ गए। कृष्ण आए और साथ में वसुदेव को भी लेकर आए, देवकी को लेकर आए, इंद्र आए वहां से, इंद्र की पत्नी शची आई, और उन सब के सामने विवाह हुआ। तो रात रात में ही विवाह हो गया। और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा देखो सुबह वो रथ खड़ा है मेरा, घोड़े जुते हैं, लेके चले जाना। तुम्हें जो रोकने का प्रयास करेंगे उनको सब परास्त कर देना, मैं उनको बोल देता हूँ ज्यादा तुम्हें रोकेंगे नहीं। और क्योंकि बलराम जी को मैं कह नहीं सकता कि मैं जाकर शादी करा के आया, बलराम जी मेरा गला काट देंगे, तो इसीलिए तुम भाग जाना लेके सुबह। और फिर श्री कृष्ण रातों रात जहां पे थे वहां पहुंच गए। अब सुबह अर्जुन ने रथ पर बिठाया सुभद्रा को और लेकर चल दिए। तो जो रोकने वाले थे वो भक्त थे, उनको श्री कृष्ण बोलकर आए थे ज्यादा युद्ध मत करना, थोड़ा बहुत करना ताकि बलराम जी को दिखाना, थोड़ी चोट वोट लगनी चाहिए ताकि जाके दिखाओ अर्जुन ने मार दिया, अर्जुन ने मार। तो उन्होंने युद्ध किया, थोड़ा बहुत युद्ध हुआ, अर्जुन चले गए। और उसके बाद ये भाग कर गए बलराम जी के, बलराम जी रक्षा कीजिए। तो क्या हुआ? तो बोले क्या हुआ क्या हुआ? अरे वो अर्जुन था, वो अर्जुन सन्यासी लेकर भाग गया, मैंने देखा वो अर्जुन था, अर्जुन था सन्यासी के रूप में, हाँ सुभद्रा को लेकर भाग गया। हाँ। बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया। आप सोचिए बलराम जी, सारा बल है उनके ही महल से, उनकी नगरी से, उनकी ही बहन को कोई लेकर चला जाए, ये तो एकदम बड़े आश्चर्य की बात है। ये तो जैसे आज के समय में कहें तो प्रधानमंत्री के घर से कोई जाकर प्रधानमंत्री की पुत्री को उठाकर ले जाए और विवाह कर ले और सारी सिक्योरिटी ऐसी की ऐसी रह जाए। तो बलराम जी बड़े हैरान हो गए, भागे सब वापस आए कि बलराम जी बहुत क्रोध में थे। उन्होंने कहा कि इसको मैं आज छोड़ूंगा नहीं, आज सारे कुरुवंश को मैं अकेला ही समाप्त कर दूंगा, हमारा अपमान कर दिया ऐसे लेकर, हमने सन्यासी समझा, हमने इतना मान सम्मान दिया और लेकर भाग गया। तो उस समय फिर सब लोग बैठे, तो मध्वाचार्य जी वर्णन करते हैं कि सब जोश में थे, कोई कह रहा था मैं अभी जाऊंगा, इतने लोगों को मैं अकेला मारूंगा, ये वो। बलराम जी भी बड़े क्रोध में थे, कृष्ण केवल सर पर हाथ रखकर बैठे थे कि ये लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। तो जब सब हो गया तो बलराम जी ने कृष्ण से पूछा तुम क्यों सर पर हाथ रखकर बैठे हो, तुम क्यों नहीं कुछ कहते? तो कृष्ण कहते हैं मैं क्या कहूं, मैंने तो पहले ही आपको मना किया था, कहा था कि नहीं, मैंने पहले ही मना किया था कि मत भेजो सन्यासी को, आपने भेजा। बलराम जी हाँ कुछ बोल रहे सही बात है, और कृष्ण ने मना किया था नहीं भेजना। दरअसल कृष्ण ने इसीलिए मना किया था कि बाद में बोल तो सके, नहीं तो बलराम जी के सामने कौन बोल सकता है। तो कृष्ण ने कहा आपको मैंने कहा था, आपकी वजह से हुआ है। तो बलराम ने कहा ठीक है, लेकिन अब क्या करना चाहिए तुम बताओ। तो उस समय उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हमारा अपमान हो गया? अरे अर्जुन उस समय सुभद्रा को लेकर गया जब हम में से कोई यहां पर नहीं था। अपमान अर्जुन का हुआ है, अगर वो क्षत्रिय है तो सामने लेकर जाता हमारे, ऐसे पीछे से लेकर गया है, इसलिए अपमान हमारा नहीं उसका हुआ है। और दूसरी बात, विवाह किससे हुआ है? अर्जुन से। अगर सुभद्रा को ले गया तो कौन? अर्जुन वीर है, क्षत्रिय है, अच्छे वंश से है, तो क्या तकलीफ है अगर हम उससे विवाह कर देते हैं सुभद्रा का? तो हमारे लिए तो गर्व की बात है। तो सबने कहा, जैसे कृष्ण जब बोलते हैं ना तो सामने कोई कुछ मना नहीं कर पाते, कृष्ण को बोलने की ऐसी चतुराई है। जब वो किसी चीज को करवाना चाहते हैं तो सामने कोई भी हो, बलराम जी भी, हाँ हाँ ये जो कह रहा है ये ठीक है, तो क्या करना चाहिए? अभी जाओ और उनको लेकर आओ और फिर उनका विवाह यहाँ कराएंगे, द्वारका में विवाह होगा और फिर आराम से वो लोग यहाँ रहेंगे। तो फिर उस समय द्वारका में उनका विवाह हुआ सुभद्रा का और अर्जुन का। बलराम जी भी मान गए, सब मान गए और फिर से बहुत सुंदर तरीके से विवाह हुआ। बहुत दहेज भी उन्होंने दिया, भगवान ने और बलराम जी ने, दोनों ने बहुत दहेज दिया था अलग अलग। बलराम जी ने अपने हिसाब से भेजा था, मतलब जैसे कृष्ण ने रथ और घोड़े भेजे अपने हिसाब से, बलराम जी ने हाथी भेजे थे, हजारों हाथी। तो इस तरह से सुभद्रा का विवाह हुआ। इस सारे प्रसंग में सुभद्रा के विवाह का प्रसंग या सुभद्रा का हरण का प्रसंग या अन्य विवाह जो अर्जुन ने किए, हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अर्जुन जहाँ जा रहा है किसी से आसक्त हो जाता है, विवाह कर लेता है। उलूपी से किया, फिर चित्रांगदा से किया, फिर सुभद्रा से किया, द्रौपदी से पहले ही कर चुका था। तो क्या इंद्रिय संयम नहीं था अर्जुन को? क्या ऐसा था? नहीं, इंद्रिय संयम जितना अर्जुन का था बड़े बड़े ब्रह्मचारियों का भी नहीं था। अश्वत्थामा जो नैष्टिक ब्रह्मचारी है बचपन से, जब उसकी और अर्जुन की तुलना की जाती है तो अर्जुन को श्रेष्ठ ब्रह्मचारी कहा जाता। अर्जुन विवाहित हैं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार पत्नियां हैं, लेकिन उनको ब्रह्मचारी श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्या इंद्रिय संयम नहीं था उनका? इससे तो ये प्रतीत होता है। नहीं, ये सारी योजनाएं हैं भगवान की। इंद्रिय संयम अगर अर्जुन का देखना है तो अर्जुन जब स्वर्ग में गए, एक वर्ष के लिए वो स्वर्ग में रहे थे, तो अर्जुन जब स्वर्ग में गए तो स्वर्ग की बहुत सुंदर अप्सरा उर्वशी एक समय सभा में थी, नृत्य हो रहा था, अर्जुन ने उर्वशी की ओर देखा, उर्वशी ने सोचा कि ये मेरी ओर आकर्षित हो गया है। उर्वशी गई अर्जुन के पास और उर्वशी उनसे संग करना चाहती थी। तो आप सोचिए, हम तो बात कर रहे अर्जुन ये राजकुमारियों की, अप्सरा थी उर्वशी, और उर्वशी अप्सराओं में भी श्रेष्ठ हैं, बहुत सुंदर हैं। लेकिन जब वो अर्जुन के पास आई, अर्जुन ने कहा मैं तो आपको एक माता के रूप में देख रहा था, आप मेरे पूर्वज, पूर्वजों का संग आपने किया है। एक समय उर्वशी नीचे आई थी और अर्जुन के पूर्वजों का संग हुआ था, तो इसलिए मैं आपको माता के रूप में देख रहा था। उर्वशी ने कहा ये स्वर्ग है, यहाँ ये सब नहीं होता है, यहाँ लोग भोग के लिए आते हैं, आनंद के लिए आते हैं, तुम भूल जाओ सब, आनंद लो। अर्जुन ने कहा नहीं। तो अगर अर्जुन का इंद्रिय संयम नहीं होता, आत्म संयम ही नहीं होता, तो फिर उर्वशी को देखकर भी प्रभावित हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। भक्ति के जीवन में आत्म संयम बहुत आवश्यक है। भक्ति के जीवन में धर्म का पालन, नीति का पालन, नियमों का पालन बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमें अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें आत्मसंयमी बनना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, कम से कम नैतिकता का पालन करना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि हम अर्जुन की बात करते हैं, युधिष्ठिर की बात करते हैं, ये सब कल्पनाएं नहीं है, ये भगवान के महान भक्त हैं, इन पर भगवान की कृपा हुई। किस लिए? पहला कारण, इनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति। इतना गाढ़ा प्रेम है इन सबका, इन भक्तों का भगवान के प्रति, कि भगवान बाध्य हो जाते हैं इन पर अपनी कृपा बरसाने के लिए। दूसरा, समर्पण। इनके जीवन में कृष्ण के प्रति और कृष्ण के अलावा और कुछ है ही नहीं, केवल कृष्ण। हमें जीवन में प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन को इस तरह ढालें कि हमारे जीवन में भी अगर हमारा विचार हो, हम सोचें, हम कुछ देखें, हम कुछ पढ़ें, हम कुछ सुने, तो वो कृष्ण से संबंधित हो, ताकि हमारी चेतना शुद्ध हो सके। दरअसल हम सब कृष्ण से संबंधित हैं, इस समय भूले हुए हैं उस संबंध को, और इसीलिए कष्टों में हैं, इसीलिए शरीर धारण करते हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, बुढ़ापा आता है, कष्ट आते हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं है उसका, क्योंकि भूल चुके हैं उस संबंध को। तो इन कथाओं से अपने उस संबंध को पुनः स्थापित करना चाहिए, और उसके द्वारा हमें फिर श्री कृष्ण की भक्ति में लगना चाहिए, जिससे इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकें। ये मनुष्य जीवन हमें खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है, ये बहुत बड़ा उपहार है भगवान का, लेकिन इसका उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार और भगवत प्राप्ति। इसको भूले नहीं, इसको हृदय में रखकर अगर हम मनुष्य जीवन में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं तो निश्चित सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा केवल समय की बर्बादी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी के कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। माइक लीजिए, पीछे पीछे।
जो अर्जुन 12 वर्ष के लिए
वनवास था, अज्ञातवास नहीं था, इसीलिए सबको पता था। उन्होंने नहीं, नहीं, सन्यासी तो केवल वो सुभद्रा के हरण के लिए बने थे, उसके पहले नहीं। उससे पहले वैसे घूम रहे थे, लेकिन क्योंकि ऋषि मुनियों के साथ घूम रहे थे तो उन्होंने ऐसा कोई विशेष अपना क्षत्रिय का सब गहने वहने पहने हुए, आभूषण धारण किए हुए, कवच धारण किए हुए, ऐसे नहीं गए, क्योंकि वनवास है तो वन में रह रहे थे, लेकिन अज्ञातवास नहीं था। तो इसीलिए जैसे रह रहे थे तो काफ़ी समय रहते रहते उनका वेश ऐसा हो गया था थोड़ा बहुत, लेकिन कोई ऐसे छुपे हुए नहीं थे वो, उन्होंने अपने आप को छुपाया नहीं था। और कोई प्रश्न किसी का? उसको ऑन ही रखिए, बंद नहीं कीजिए।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
ये बलराम जो है पहले एक्सपेंशन है, फर्स्ट एक्सपेंशन, तो विष्णु तत्व है क्योंकि, तो इनके दोनों का जो बिहेवियर है सिमिलर होना चाहिए। हम देखते हैं कि जब ये कृष्ण जो है पांडवों के दूर बनकर जाते हैं तो वो इनके 56 भोग थे उनको ठुकरा करके और विदुर के पास जाते हैं, कृष्ण नहीं जाते हैं उनके पास में, दुर्योधन के पास में। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बलराम जो है उनको पता नहीं क्यों दुर्योधन से इतना प्रेम था, उनको गदा चलाने की शिक्षा दी, अपनी बहन का भी विवाह उनसे करना चाहते थे, ये कंट्राडिक्शन है।
पहली चीज कि भगवान दोनों भगवान हैं, बलराम जी भी भगवान हैं और कृष्ण भी भगवान हैं, लेकिन भाव में अंतर है। बलराम जी सेवक भगवान हैं और कृष्ण सेव्य भगवान हैं। बलराम जी सेवक के रूप में उनकी सेवा करते हैं, इसीलिए वो आदि गुरु कहलाते हैं, जिनसे जो परंपरा गुरु की आती है वो सारे सेवक हैं। तो बलराम जी भी भगवान हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, स्वयं भगवान ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। तो बलराम जी वही हैं, लेकिन भाव में अंतर है। तो इसीलिए भाव में अंतर होने के कारण सेव्य और सेवक का भाव है। दूसरा, लीला में जब लीला होती है तो लीला के लिए जो आवश्यक है कृष्ण की लीला का रस बढ़ाने के लिए बलराम जी अलग अलग रूप लेते हैं। चैतन्य चरितामृत में यह भी वर्णन है कि जो भी वो रूप लेते हैं कृष्ण लीला रस सहाय, कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए लेते हैं बस। अगर उससे कृष्ण की लीला का रस का आस्वादन नहीं बढ़ता है तो वो नहीं करते हैं। तो इसलिए लीला के रस को बढ़ाने के लिए उन्होंने दुर्योधन को सपोर्ट किया। तो लीला है, ठीक है। और कोई प्रश्न?
हरे
कृष्ण। युधिष्ठिर बलराम जी बड़े हैं या युधिष्ठिर बड़े हैं? बलराम जी बड़े हैं, बलराम जी बड़े। युधिष्ठिर और बलराम में आप पूछ रहे हैं ना, अब बलराम जी बड़े हैं क्योंकि महाभारत में वर्णन है कि जब युधिष्ठिर और बलराम मिला करते थे तो युधिष्ठिर उनके बलराम जी के चरण छूते थे, कृष्ण युधिष्ठिर के चरण छूते थे, तो इसलिए बलराम जी बड़े। युधिष्ठिर बड़े हैं इसीलिए कृष्ण उनके चरण छूते थे। युधिष्ठिर और अर्जुन एक समान है, भीम और कृष्ण और अर्जुन एक समान है, भीम और युधिष्ठिर कृष्ण से बड़े हैं, ठीक है। यहाँ दीजिए आगे माइक।
हरे कृष्ण, सुनामी है, फिर भी लैंडस्लाइड्स हैं, फ्लास्ट्स हैं, उसमें बहुत ये क्या चीज पहले से बने थे, इससे अगर कोई खराब है तो समाज का बहुत उदय होगा।
निश्चित ये सब वर्णन किया जा चुका है पुराणों में। एक स्थान पर वर्णन है कि जब पृथ्वी में खनन करके पृथ्वी की नसें बनाई जाएंगी, अर्थात जो पाइपलाइन अभी डाली जा रही है, तो उस समय बहुत उत्पात होगा। तो ये सारा वर्णन शास्त्रों में बहुत पहले से है कि क्या क्या होने वाला है। तो ये जो सुनामी आता है, अर्थक्वेक आता है, ये सारे के वर्णन है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा क्या क्या असर होगा और क्या प्रभाव। दरअसल ये जो सब सुनामी वगैरह आना है ये पृथ्वी प्रकृति इसका रिएक्शन है, ये प्रकृति का जो कार्य हम कर रहे हैं उसका प्रभाव है। तो इसीलिए जितना हमारे आसुरी कार्य बढ़ेंगे उतना ये सारी चीज़ें भी बढ़ेंगी, नहीं तो कहाँ पहले किसी ने सुनामी सुना था। लोग कहते थे समुद्र कभी अपनी सीमा नहीं तोड़ता, अभी तो वो भी तोड़ देता है। तो इसीलिए ये सब पहले से निश्चित है, वर्णित है अलग अलग शास्त्रों में, कई स्थानों में इसका वर्णन कि ये सब होगा, ठीक है। और कोई प्रश्न? ठीक है, अभी भजन गाएंगे गोकर्ण में।